नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडियन एआई स्टार्टअप्स के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में कल से शुरू। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी और 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर इंडियन एआई स्टार्टअप्स के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारत में अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 से पहले सभी के लिए एआई ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई करने वाले 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स इस बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि ये स्टार्टअप्स भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, ई कॉमर्स के लिए जनरेटिव एआई के उपयोग से 3D कंटेंट निर्माण, विपणन और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण, इंजीनियरिंग सिमुलेशन, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और चिकित्सा अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सहशिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व के लिए मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाने वाले एक अद्भुत एआई मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित हों। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मधुलिका।
विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली में होगा। ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संवाद का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में होगा। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को समापन सत्र में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे।
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में एडिशन करके 2O के रूप में इस बार 2026 में हो रहा है। देश के युवाओं के लिए ये इसलिए आइडियल है कि सारे देश में माई भारत के प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत के लिए क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन करा गया। एक हैकाथॉन का भी डिजाइन फॉर इंडिया, ऐसे डिजाइन की भी कंपटीशन हुई थी, उसको भी यहाँ आमंत्रित करा गया है। देश की डाइवर्सिटी को बताती हुई कल्चरल टैलेंट को भी हमने कंपटीशन के द्वारा आइडेंटिफाई करके प्लेटफॉर्म दिया है।
श्री मांडविया ने कहा कि देश और विदेश के 2500 से अधिक युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी बातचीत में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य केवल नीतियों या संस्थानों से ही नहीं बल्कि युवा नागरिकों की कल्पना, दृढ़ विश्वास और साहस से आकार लेगा।
विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, ये 25 साल में ये युवाओं को विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। तो ये युवा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से ही युवा निर्माण करते हैं।
राजधानी के लाल डोरे क्षेत्र में हाउस टैक्स माफी को लेकर दिल्ली देहात के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली नगर निगम महापौर राजा इकबाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक पारंपरिक रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं और उन पर हाउस टैक्स लगाना अव्यवहारिक है बल्कि आर्थिक रूप से भी अनुचित बोझ है। श्री सचदेवा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि लाल डोरा क्षेत्र दिल्ली की मूल पहचान है और यहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने महापौर से इस विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राजधानी में 2002 में मेट्रो सेवाओं के शुरू होने से पहले अखबारों में छपे विज्ञापनों को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष पैनल का मेट्रो संग्रहालय में आज उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मेट्रो संग्रहालय में एक विशेष प्रदर्शनी भी तैयार की जा रही है, जिसमें टिकट, सार्वजनिक नोटिस, विज्ञापन वगैरह दिखाए जाएंगे, जो 2002 में दिल्ली में मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को दर्शाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज आवाजों के जुगनू पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की चुनिंदा प्रसिद्ध आवाजों को दस्तावेज कराना और संरक्षित करना है। इस प्रकाशन को पुस्तक और ऑडियो दोनों रूपों में जारी किया गया, जिसमें रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार और प्रामाणिक सामग्री शामिल हैं। इसमें 31 ऐसे व्यक्तियों की यात्रा को दर्शाया गया है जो आकाशवाणी, विभिन्न FM चैनलों और वॉइस ओवर उद्योग, प्रसारण और मंचीय कविता से जुड़े रहे हैं। IGNCA ने बताया कि ये प्रकाशन रेडियो और आवाज आधारित कहानी सुनाने की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है, जो दर्शकों के साथ लंबे समय से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर व्यवसायिक विकास के लिए संपत्ति विकास क्षेत्रों के लाइसेंस जारी करने के लिए निविदा आमंत्रित की है। इस निविदा के अंतर्गत स्टेशन के संपत्ति विकास क्षेत्रों में रूफटॉप रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, कैफे तथा अन्य व्यवसायिक निर्माण जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये मेला भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। पुस्तक मेला भारतीय सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता @75 विषय के माध्यम से श्रद्धांजलि देगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस विषय को 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले विशेष रूप से तैयार किए गए पवेलियन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पुस्तकें, प्रदर्शनियां, दृश्य प्रस्तुतियां और लाइव कार्यक्रम शामिल होंगे। यह पवेलियन भारतीय सेना के इतिहास, रक्षा और रणनीति पर 500 से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी के माध्यम से सेना, नौसेना और वायु सेना के महत्व को प्रदर्शित करेगा। इस वर्ष कतर अतिथि देश है और स्पेन फोकस देश के रूप में मेले में भाग ले रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श।
दिल्ली पुलिस ने आज पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई को सुचारू रूप से जारी रखने और सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहे। इस दौरान संयुक्त उपायुक्त मधुर वर्मा और मध्य दिल्ली के उपायुक्त निधिन वल्सन समेत दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों का आकलन भी किया। मीडिया से बातचीत में श्री वल्सन ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हुए पथराव से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच कर आज 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को उच्च न्यायालय ने एक दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है।
कल जो 5 लोगों गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने एक दिन की JC दिया, तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो CCTV और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे।
दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष बिना वैध वीजा के दिल्ली में रह रहे 548 विदेशी नागरिकों की पहचान की है। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि इन्हें निर्वासन के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें सबसे अधिक 380 लोग बांग्लादेश के हैं और 111 नाइजीरियाई हैं और 13 घाना के हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के विधायी कार्य मंत्री परवेश साहिब सिंह ने सदन में कहा कि विपक्ष द्वारा दो दिनों से कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सरकार का महत्वपूर्ण कार्य लंबित है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण की प्रस्ताव पारित करने और प्रदूषण पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंजूरी दे दी। श्री सिंह ने बताया कि कल के आखिरी दिन प्रदूषण समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी।
आतिशी जी द्वारा जो उनके बयान के ऊपर में पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसी के चलते एक दिन का सत्र का समय और बढ़ाया गया है। कल पूरा दिन बाकी बचे हुए कार्यों के ऊपर में चर्चा होगी, उनको पास कराया जाएगा।
सदन अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सिख गुरुओं के प्रति की गई टिप्पणी से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंप दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सिख गुरु तेग बहादुर जी पर की गई आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा की गई कथित टिप्पणी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया और वीडियो का फॉरेंसिक जांच कराने का निर्णय लिया है। सदन में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया तथा शीतकालीन सत्र को भी एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में कहा कि विपक्ष द्वारा दो दिनों से कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सरकार का महत्वपूर्ण कार्य लंबित हुआ है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण पर प्रस्ताव पारित करने और प्रदूषण पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन की अवधि को एक दिन बढ़ाने का अनुरोध भी किया। इससे पहले दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य पटल के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदस्यों को अपने अपने स्थान पर जाने का बार बार आग्रह किया। श्री गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की नेता सुश्री आतिशी की वीडियो क्लिप की जांच राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैब को सौंप दी गई है। इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मंगलवार को गुरु तेग बहादुर को लेकर विपक्ष की नेता की ओर से दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बोलना शुरू किया। वहीं कैबिनेट मंत्री और रजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा तथा भाजपा सदस्य अरविंदर सिंह लवली ने विपक्ष के नेता पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा परिसर में कहा कि नेता विपक्ष आतिशी जिस प्रकार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उससे साबित होता है कि उन्होंने गुरुओं का अपमान जानबूझकर किया है। उन्होंने कहा कि इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। श्री मिश्रा ने विपक्ष की नेता आतिशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति के साथ साथ उनका गुरुओं पर दिया गया बयान विधानसभा का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का हाथ है। श्री मिश्रा ने श्री केजरीवाल से भी सार्वजनिक माफी की मांग की। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। दिनभर धूप खिली रहने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडियन एआई स्टार्टअप्स के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में कल से शुरू। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी। और 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।